कि कुछ एक्सट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो उमूमी उसूल होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मादियात से होता है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप मिसाल के तौर पर टाइम को कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट्स को लेकर आएंगे, इन सब का ताल्लुक भी मादियात से है। टाइम मादियात की निशानी होती है, जब कोई फासला तय होगा तो टाइम होगा, फासला तय नहीं होगा तो कोई टाइम नहीं होगा। और इसी तरह डिस्टेंस फासले का तय होना ये भी मादियात से है, और मेजरमेंट अंदाज़ा जो होगा ये भी मादियात से है। अच्छा, इन उलूम को भी बयान करने में कोई ख़ास दुश्वारी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट तो हैं, उसूल हैं, लेकिन ये चूँकि मादियात के ऊपर बेस कर रहे होते हैं तो ये इसको बयान कर सकते हैं। दुश्वारी कहाँ पे आती है? दुश्वारी वहाँ पे आती है जहाँ पर कोई इल्म ऐसा हो कि जो मादियात को बयान ना करे। और जब हमने कहा मादियात को बयान ना करे तो इसका मतलब है अब हवा से खमसा बेकार हो गए। हवा से खमसा मादियात के लिए है, सुनना, देखना, चखना और आपका लम्स करना, ये सब का सब मादियात के लिए है। अगर कोई इल्म ऐसा हो कि जो मादियात को बयान ना कर रहा हो, मटीरियल्स को बयान ना कर रहा हो, तो अब उसके सामने एक दुश्वारी आती है कि अब उसने एक ऐसी चीज़ कहनी है जो ना इन्होंने देखी है ना देखने के काबिल है। देखने की ताकत ही नहीं है इंसान के अंदर, ना इन्होंने सुनी भी नहीं है और सुन भी नहीं सकते इस कान से, इन्होंने चखी भी नहीं है और चख भी नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर खुदा तआला ने जन्नत में दी जाने वाली ग़िज़ाओं को बयान करना है। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ग़िज़ा मादी होती है, आया जन्नत में जो मिलने वाली ग़िज़ाएँ वो भी मादी हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन चूंकि खुदा ने ऐसे इंसानों के सामने बयान करना है जिन्होंने सिवाय मादी ग़िज़ा के कुछ लिया ही नहीं है, अब वो मजबूर है एक सेंस में कि लेने वाले की मजबूरी की वजह से कि एक अलामती हुनर का सहारा ले, अलामती हुनर यानी सिंबोलिज्म का सहारा ले। सिंबोलिज्म में क्या होता है, हम दुनिया में सिंबोलिज्म को बहुत इस्तेमाल करते हैं। शायरी में आपने देखा माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी तमासिल दी गई। मसलन मौत फ़र्ज़ करें अपने पंजे गाड़ी हुई है। अब जब आपने कहा कि मौत पंजे गाड़े हुई है तो आपने मौत को मसलन एक उकाब से तशबीह दे दी, और ये उकाब जैसे पंजे गाड़ देता है तो मौत, अब जाहिर है कि मौत के तो पंजे नहीं हैं, न मौत उकाब है, तो ये आपने क्या किया, इसको हम कहते हैं सिंबोलिज्म, कि आपने अलामतों से इस्तेफादा किया। अच्छा, अब ये जो अलामतों से इस्तेफादा करना होता है, इसमें एक और चीज़ होती है, मुझे कि एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, मैं उसको भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। माकूल को महसूस से तशबीह देना, सही, माकूल को महसूस से तशबीह देना, यानी क्या, मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो माकूल है, अक़ल में आने वाली है, हिस में आने वाली नहीं है, सिर्फ अकल में आने वाली है, लेकिन चूंकि वो एक्सट्रैक्ट होती है उसको समझना मुश्किल होता है, तो हम उसको तशबीह दे देते हैं महसूस से, जो हिस में आ जाए, जो हिस में आ जाए। अब माकूल को महसूस से तशबीह दी जाती है ताकि माकूल लोगों के लिए आसान हो जाए। तो खुदा तआला ने तशबीह देनी थी गुमराही से, गुमराही के लिए। अच्छा, गुमराही कोई मटीरियल फिनोमिना नहीं है, एक आदमी गुमराह हो गया तो इसका कोई मादी फिनोमिना नहीं है। मादी फिनोमिना क्या होगा, मसलन मशरक की तरफ गया, मगरिब की तरफ गया, शुमाल की तरफ गया या जुनूब की तरफ गया, तो ये तो मादी हो गया। मसलन अगर मुझसे कोई पूछे समंदर कराची के किस समत में है, तो मैं कहूँगा जुनूब की समत में, ठीक है, तो ये मादी हो गया। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे मैं हिदायत पर हूँ या गुमराही पर, अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है कि मशरक में जा रहा है या मगरब में जा रहा है, शुमाल में जा रहा है या जुनूब में जा रहा है, गुमराही का कोई ताल्लुक चार समत से नहीं है, इसका मादियात से कोई ताल्लुक नहीं है। गुमराही तो अगर हक पर है तो हिदायत याफ्ता है, और हक से गुरेज कर रहा है तो गुमराही पर है, इसका मादियात से क्या ताल्लुक, सही। अब खुदा तआला ने गुमराही के मुख्तलिफ दर्जे बयान करने हैं। मसलन कुछ लोगों की गुमराही ऐसी होती है कि गफलत की गुमराही होती है, ज़रा सा उनको हिलाओ, उनको बताओ भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो समझ जाता है और सीधे रास्ते के ऊपर चल निकलता है। अब खुदा ने समझाना है कि बाज़ लोगों की गुमराही इंतहाई अमीक है, इतनी गहरी है, कुछ भी करने हक पे नहीं आते, तो कैसे समझाता है, फरमाते तो ऐसे सोचो कि जैसे सख्त तरीन तूफान में, सियाह रात में, बादलों की जद में एक किश्ती बगैर किसी चलाने वाले के चल रही है। अब कोई है जो इस किश्ती को मंजिल तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, ना आसमान पे कोई निशानी, ना जमीन पे कोई हिदायत और रहनुमाई, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चल रही है। ये पता नहीं कहाँ जाएगी, पता नहीं तूफान में टकरा टकरा के टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका कुछ नहीं पता मंजिल तक पहुंचेगी। अच्छा, ये किस बात की मिसाल थी? ये गुमराही की मिसाल थी। और इसमें कितनी अलामतें इस्तेमाल की गई, मसलन घटा टोप अंधेरा, सख्त अंधेरा, सख्त तूफान, लकड़ी की किश्ती, नाजुक, टूटने के काबिल, और उस आलम में कोई चलाने वाला भी नहीं है और आसमान पे कोई निशानी भी नहीं है। अब गुमराही गैर मादी हकीकत है, नॉन मटेरियल फिनोमिना है, लेकिन उस नॉन मटेरियल फिनोमिना को बयान करने के लिए जो मिसाल आपने दिए वो मादी दी है, तो इसको कहते हैं तशबीह है माकूल बे महसूस। ये अलामती काम दीन में बहुत करना पड़ता है, क्यों? उसी हकीकत की वजह से कि हकायक गैर महसूस हैं और सुनने वाले महसूसात के आदि हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल आ जाती है। अब जहाँ तक जब देख लिया कि माकूल को महसूस से तशबीह देनी पड़ जाती है, अब ये जो मौत का मामला है, मौत और मौत के बाद बरज़ख, क्या मादी है ये? नहीं, मादी जिस्म पे आती है, लेकिन इंसान की तमाम हकीकत मादी नहीं है। इंसान की हकीकत में मादी जिस्म उसका एक अदना पहलू है, आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। जो हम कहते हैं ना इंसान के दो पहलू हैं, मादी और रूहानी, तो ऐसा नहीं है कि ये अहमियत के लिए आधे आधे बराबर के हैं, नहीं, ये अदना पहलू है। और इसी खातिर दुनिया दुनिया है, अदना के मुअन्नस को दनी और दुनिया कहते हैं, अदना यानी पस्त और दुनिया यानी कोई मुअन्नस पस्त, उसको कहते हैं दुनिया। और दुनिया हमने किस बात के लिए टाइटल रखा है? इस जगह के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, मटेरियल वर्ल्ड के लिए। आप सोच रहे हैं, तो ये जो हम इसको दुनिया कहते हैं ना, दुनिया का मतलब ही पस्त होता है, पस्त। और ये मुअन्नस है किसका? अदना का, अदना का। अदना उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन दुनिया उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप देखें तो दुआ नुदबा के अंदर दुनिया दनिया, दुनिया दनिया इस्तेमाल हुआ है, वो दनिया वो भी पस्त के माना में है। तो इसरार है इस बात के ऊपर कि ये जो फेस जिंदगी का है, मैं बहुत एहतियात से इस जुमले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो जिंदगी का ये फेज है, ये मरहला है, ये पस्त है, ये इंतहाई पस्त है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत आला मराहिल को गुजारते हुए इस पस्त पे आकर रुके हैं, और इस पस्त के बाद हमें दोबारा सफर करना है उन्हीं आला मराहिल की तरफ, उन्हीं आला मराहिल। ये पस्तरीन जगह है, पस्तरीन जगह है। बहुत सादा सी है कि इसकी मिसाल वही जो माकूल को महसूस पर लाने के लिए दी जाती है। और आप इसमें माकूल को अगर थोड़ा सा इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा और वसी कर लेता हूं। हमारे पास एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिंदगी और मौत को बयान करने के लिए, और जिंदगी बाद अस मौत को बयान करने के लिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अब ये थोड़ा सा जिसे कोई कह सकता है कि भाई आप इल्मी अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन हम इल्मी अय्याशी से फायदा उठा लेंगे। अभी कौस कहते हैं कमान को, कमान को कौस कहते हैं। तो हमारे यहाँ उर्दू में कौस व खजा इस्तेमाल होता है, कौस चूंकि वो कमान की शक्ल बनती है उसमें, कौस कमान को कहते हैं। अच्छा, एक को कहते हैं जिंदगी में, जो हमारी ये वाली जिंदगी है जिसको दुनिया दनिया कहते हैं, इससे पहले एक कौस है उसे कहते हैं कौस नुजूल, और इसके बाद एक कौस है उसको कहते हैं कौस सऊद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको मैं बहुत सादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सादगी से असाज़ा ने बयान किया हुआ है, वो इस तरीके से है। बहुत माज़ा चाहता हूँ, ये मिसाल अजीब सी है। आप घड़ी सोचिए, जो एनालॉग घड़ियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो टॉप पर है वो 12 है, और जो बॉटम पर है बिल्कुल नीचे है वो 6 है। सही है? तो अब आप जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को सोचने के लिए आप ये सोचिए कि आप 12 से शुरू हुए और गिरना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू किया। सही, अब आप घड़ी को दो कॉस में तब्दील कर लें। कॉस कमान होता है ना, हाफ सर्कल को कॉस कहते हैं, हाफ सर्कल, आधा दायरा। सही, तो इस घड़ी के दो दायरे कर लीजिए, एक वो दायरा है जो 1 से लेके 6 तक आ रहा है, और एक वो दायरा है जो 6 से लेके 12 तक जा रहा है। इसको कि हम ऊपर से शुरू हुए और गिरते हुए दुनिया तक आए, इसको कहते हैं कॉस नुजूल, ऊपर से गिरे नीचे आ गए। सही है, अब क्या होगा? अब कौसे सऊद होगा, अब नीचे से उठ के ऊपर तक जाना है। कुल हयात यही है, कुल हयात यही है। एक कौसे नुजूल है, एक कौसे सऊद, और उस कौसे नुजूल और इस कौसे सऊद के दरमियान ये दुनिया दनिया है। सही। अब देखिए, इस अगर ये एक बात पिक कर ली जाए कि यहां दो कमाने हो गई, और मैं इसलिए तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आप सब लोग इससे मजा ले सकें कि हम लोग कहां पे हैं इस वक्त। तो हमें कौसे नुजूल से आए, बारह से गिरे, हकीकत उलिया जिसको हम लोग कहते हैं आला तरीन हकीकत, वो बारह है जिसको आप खुदावंद मुताल का वजूद मुकद्दस ताबीर कर सकते हैं। उस नूर महज से हमारे वजूद के मराहिल गिरना शुरू हुए। नहीं मालूम आलम जर ले लो, कौन कौन से मराहिल, कौन कौन से अवालम को गुजारते हुए हम गिरते 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 इस दुनिया में आ गए जो छह है, जो एनालॉग घड़ी के अंदर छह बना हुआ है। सही है। अच्छा, अब यहां तक तो गिरना था, अब इसके बाद और गिरना नहीं है। गिरने की अलामत क्या है? गिरने की अलामत यह है कि हम जैसे रूहानी नूरानी हकायक मादी जिस्म में महदूद हुए हैं, ये हमारे नुजूल और पस्ती की अलामत है। आपकी जो हकीकत है वो बदन है या रूह है? रूह है। रूह मादी है या गैर मादी है? गैर मादी है, ये रूहानी है। وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ آپ کے اندر اتنا عظیم و شان وجود ہے جس کو خدا نے اپنی روح سے تعبیر کیا ہے، یہ قطعاً مادی نہیں ہے، یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی نورانی، انتہائی بلند حقیقت ہے۔ اتنی بلند حقیقت کس کے ساتھ مکس ہوئی ہے؟ اس جسم کے ساتھ۔ یہ پستی کی علامت آ گئی۔ اب اس سے زیادہ پست انسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا، آپ یہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب وہ جو انہوں نے بہت خوبصورت مصرعہ پڑھا تھا، ماشاءاللہ کیا مصرعہ پڑھا تھا آپ نے، وہ جو تھا کہ گھومے سیر کی گھومے پھرے واپس وطن میں آ گئے۔ اب آپ سوچئے گا، آپ اوپر سے گر کے نیچے آئے تھے، سیر کی گھومے پھرے واپس وطن میں۔ صحیح ہے۔ بس میں ایک اضافہ کروں گا، اب واپس وطن میں آئے نہیں ہیں، واپس وطن میں آنے کا سفر شروع ہوا ہے، بہت لمبا ہے، چھ سے اٹھ کے بارہ تک جانا ہے، یہ سفر چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اچھا، یہ سفر ہے کیا؟ اب میں یہ جو گھومے پھرے سیر کی گھومے پھرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے مرے، اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب ایک سفر ہے، کون سے قوس کا، نزول کا یا صعود کا؟ صعود کا، اوپر جانے کا، چھ سے بارہ کا۔ صحیح۔ یہ سفر ہے کیا، ہونا کیا اس کے اندر، اور یہ جو ہم چھ پر ہیں یہاں پہ کیا ہونا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم اور دین مبین سمبولزم کے بغیر نہیں سمجھا سکتا، اس نے علامتوں کا سہارا لینا ہے، ہم اس کے سوا سمجھنے قابل بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، شاذ و نادر کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر جو اس کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اس کو پھر حواس خمسہ سے بالکل آزاد ہونا پڑے گا، اور انسان، ہم لوگ زیادہ تر حواس خمسہ کے اندر محدود ہونے والے لوگ ہیں، ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگ اس کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی عقلیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ وہ حواس خمسہ کے اندر قطعاً محدود نہیں ہوتے۔ اب تصور فرمائیں، ہم لوگ کی، میں یہ بریکٹس کے اندر رکھ کے جملہ معترض کروں، ہم لوگ اتنے مادیات کے عادی ہیں کہ خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں، خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی فرشتے کو دیکھتے ہیں تو روحانی وجود میں نہیں دیکھتے، وہ بھی مادی وجود میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی مادیات محض میں گرفتاری کی علامت ہے کہ ہم مادیات میں اتنے غرق ہو گئے ہیں، اتنے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ مادیات صرف اس فیز میں ہیں، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی خواب آتے ہیں سب مادیات میں آتے ہیں، جبکہ مادیات صرف اس فیز میں ہیں، اس کے بعد کہیں مادیات نہیں ہیں، نہ اس سے پہلے کہیں مادیات ہیں، صرف اس فیز کے اندر ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے گویا ہوا یوں ہے. اب اس کو بیان کرنے میں اگر ذرا سی غلطی ہو تو پھر مسائل بہت زیادہ ہیں، پھر مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن تشبیہن، کنایہ، استعارہ، مثال جو آپ کہیں اس کو استعمال کر لیجئے. یوں سوچئے جیسے کوئی بہت بڑا وجود، بہت عظیم الشان وجود، اس نے اپنے وجود سے کچھ ٹکڑے نکالے. اچھا یہ سب مادی باتیں ہیں، یہ روحانی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہم لوگ اتنے عادی ہیں، ہم سوائے مادیات کے کچھ نہیں کر پاتے، صحیح. تو ایک بہت بڑے وجود نے اپنے وجود سے ٹکڑے نکالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اربوں ٹکڑے نکالے، اور ہر ٹکڑے کو یہ ٹاسک دیا، یہ کام دیا کہ وہ اس کا جیسا بن کے دکھائے. سمجھے؟ بہت عظیم الشان وجود ہے، بہت عظیم الشان وجود ہے، اس نے اپنے وجود سے اربوں ٹکڑے نکالے. اور وہ عظیم الشان وجود ایسا ہے کہ اربوں نکالنے کے بعد اتنے ارب اور نکالے تو اس کے وجود پہ کوئی کمی نہیں آتی. اس نے اپنے وجود سے اربوں وجود نکالے، اور ہر چھوٹے مختصر ذراتی وجود کو ایک ہدف دیا. وہ کیا دیا؟ تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ. صحیح. اس ذراتی وجود نے کہا کہ اے عظیم الشان وجود، میں جو اتنا ذراتی وجود ہوں، مائکروسکوپک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں کام دے رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کام کا وسیلہ بھی نہ دوں. تمہیں اگر میں ٹاسک دے رہا ہوں، ذمہ داری دے رہا ہوں، تو ذمہ داری کا وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا. اگر میں آپ کو ذمہ داری دوں کہ آپ پورٹ تک جائیے، کراچی کی بندرگاہ تک جائیے، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بھائی 16-17 کلومیٹر 18 کلومیٹر اس آدمی نے طے کرنا ہے، یا تو ٹائم زیادہ دوں یا کوئی اس کو سواری دوں، کچھ تو دوں میں اس کو. تو خدا مثلاً وہ عظیم الشان وجود یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ تم میرا جیسا بن کے دکھاؤ. تو وہ ذراتی وجود کہتا ہے کہ میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا. تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر میں تیرا جیسا بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے نفس لے لو، نفس. میں تمہیں اپنی عظیم الشان وجود کی ایک ایسی تجلی دوں گا جس کو اگر تم سنبھال گئے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو، تم میرے جیسے بن سکتے ہو. ایسی عظیم الشان تجلی دوں گا کہ اگر تم اسے سنبھال کے لے کر چلے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو. تو اب یہ جو تجلی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظیم الشان، اتنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کہ یہ اس عظیم الشان وجود کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. تو اب ایک اور مسئلہ آیا، وہ یہ کہ یہ تجلی تو سب کو مل گئی ہے، سب کو مل گئی ہے، کیا سارے کے سارے اس جگہ تک پہنچ جائیں گے خود سے؟ تو فرماتا ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، یہاں پر کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا. تو یہ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ یہ عظیم الشان تجلی سب کو مل گئی ہے، کیا سب تیرے جیسے بنیں گے؟ تو کہتا ہے نہیں، خود سے تو سب نہیں بنیں گے. اب ذرا سا رک جائیے گا کہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ سب نے بننا ہے، سب نے بننا ہے. خود سے تو سب نہیں بنیں گے، کچھ بنیں گے، کچھ نہیں بنیں گے. تو اے عظیم الشان وجود، اس تجلی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوگا کہ کچھ بنے اور کچھ نہ بنے؟ تو کہے گا کہ میں اس تجلی کے ساتھ تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا امتحان لوں گا. جو امتحانوں میں کامیاب ہوں گے وہ خود سے اس عظیم الشان وجود کے برابر بن جائیں گے. اب جیسے آپ کہتے ہیں نا امتحان لوں گا، اب ایک بات سمجھ میں آئیے، اس عظیم الشان تجلی کے ساتھ اگر کوئی اور چیز اٹیچ نہیں ہوئی تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان کے لیے کوئی خواہش چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے کوئی لالچ چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے خیر اور شر دونوں کا امکان چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اس عظیم الشان تجلی میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، خیر محض ہے یہ. تو امتحان کیسا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس تجلی کے اندر تو خیر محض ہے، اس روح کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، سوائے تجلی عظمیٰ کی کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک پست وجود ساتھ لگا کے دوں گا جس میں شر آئے گا، اس سے تمہارا امتحان ہوگا. और वो पस्त वजूद क्या है? ये बदन और इसके तकाजे। अब हमारे पास एक अजीम शान तजल्ली है जो इलाही तजल्ली है, जो नफ्स है हमारा, हमारी रूह, और एक हमारे पास पस्त दुनिया की पस्त हकीकत है, हमारा बदन। अब जंग क्या है? जंग ये है कि ये पस्त बदन जीतेगा या वो खुदा की तजल्ली जीतेगी। जिसमें वो तजल्ली मजबूत होगी वो खुदा की जैसी हकीकतों को पाने की कोशिश करेगा, और जिसके अंदर ये बदन की हकीकत मजबूत हो गई वो बेचारा बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गया। ये जो बड़ी मुसीबत है ये तर्जुमा सलीस है खुसरान का, इन्नल इंसाना लफी खुसर, बड़े नुकसान में फंस गया है। अब हमारे पास ये दोनों हैं, ये जो जंग है इस दुनिया के अंदर वो यही है। आपके पास एक अजीम शान तजल्ली है इलाही उंसुर, और आपके पास इस पस्त दुनिया की पस्त हकीकत भी है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये दोनों लड़ते हुए हमारे पूरे वजूद को अपनी अपने वतन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का वतन यही है, और उस अजीम शान तजल्ली का वतन खुदा की जात है। सही, दोनों अपने अपने वतन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो तजल्ली है जो मुझे अपने वतन पे ले जाना चाह रही है, तो वो कह रही है तुम हो तो 6 पर लेकिन मेरा वतन 12 है, मुझे तुम्हें वहां लेके जाना है। और ये जो बदन है ये कहता है तेरा वतन 12 हो या 9, मेरा वतन 6 है, मुझे तुझे यहीं दफन करना है। सारी जंग इस पर है, सारी जंग इस पर। अच्छा, अब हर एक के पास अपना टूल है, हर एक के पास अपना वसीला है। नफ्स जो तजल्ली उज़्मा है उसके पास अपने वसीले हैं, मानवियत, खुदा से इर्तिबात, इस आलम दुनिया से क़त्अ ताल्लुक, अपनी वाबस्तगियाँ खुदा से बनाना, इस दुनिया के ऊपर ज़्यादा हरीस ना होना, जोहद, तकवा, ये इस नफ्स की तजल्ली की हकायक़ हैं। और वो जो बदन है उसके अपने वसाइल हैं, उसके वसाइल क्या हैं? ख्वाहिशात, खौफ, वाबस्तगियाँ, अटैचमेंट इसी दुनिया से। जो जिसको ज़्यादा इस्तेमाल कर गया वो वहीं का हो रहा मामला खत्म, जो जिसे इस्तेमाल कर गया वो वहीं का हो गया। तो जिसने अपने नफ्स की तजल्ली की हकीकतों को ज्यादा इस्तेमाल किया, कुर्ब खुदा, उससे उन्स, उससे वाबस्तगी, उससे लगाओ, उसकी तरफ तवज्जो, वो उस वतन का हो गया, वो उसी तरफ जाएगा। और जिसने इस बदन की ख्वाहिशात, इसके खौफ, इसकी लालच, इसकी हसद, इसके बुग्ज, इसका कीना, इसकी वाबस्तगियां, इस पे मेहनत कर दी, वो यहीं का हो गया, वो यहीं पे मारा गया। अब मौत क्या है? और आगे जो मैंने आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज किया था कि कितने लोग तजल्ली की हिदायत में खुद से खुदा तक पहुंचेंगे, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, जो अभी तक मेरी समझ में आता है वो ये कि ख्वाह ना ख्वाह जलने, मरने, कुटने, अजाब झेलने के बाद ख्वाह ना ख्वाह सबका सफर 12 पर है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इससे कि इस दुनिया से निकले और सबका सफर 12 पर है, बीच में दास्तान बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि खुदा उसे खालिदीना फीहा कहता है, खुदा उसे हमेशा का कहता है, इतनी लंबी दास्तान है ये। इसमें बरज़ख जो खुद लाखों साल की है वो एक मरहला है, बरज़ख जो लाखों साल की है एक मरहला, उसके बाद पता नहीं कितने मराहिल हैं 6 से लेके 12 तक, हमारी घड़ी में तो 4-5 ही हैं, लेकिन इस कौसे सऊद में मराहिल कितने हैं? इतने हैं कि खुदा इसको महदूद नहीं कहता, ला महदूद कहता है, खालिदीन फीहा। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, कोई आगे बहुत लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी को लोगों ने बयान करने के लिए इसको 3 मरहलों में तकसीम कर दिया। इस लंबी कहानी को बयान करने के लिए इसको तीन मरहलों में तकसीम कर दिया। तो अभी कौसे सऊद में हम कहां से होकर यहां तक पहुंचे इसको छोड़ देते हैं कि वो माजी की कहानी थी, जो होना था हो चुका। अब कौसे सऊद में, कौसे नुजूल में हम कहां से गिरे, कहां पहुंचे इसको छोड़ दें। कौसे सऊद में कहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे इसको थोड़ा सा सोच लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।